ஜயம் கோபிஜனவல்லப ஜய கிரி வரதாரி ஜய கிரி வரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லப ஜய கிரி வரதாரி கோபிஜனவல்லப ஜய கிரிவரதாரி ஜய கிரிவரதாரி ஜய ஜய கிரிவரதாரி ஜய கிரிவரதாரி யசோதானந்தன ஜய ப்ரஜ ஜனரஞ்சன ஜய ப்ரஜ ஜனரஞ்சன ஜய யசோதானந்தன ஜய ப்ரஜ ஜனரஞ்சன ப்ரஜ ஜனரஞ்சன யமுனா தீரவனசாரி ஜய குஞ்ச விஹாரி ஜய யமுனா யமுனா திரவனசாரி ஜய குஞ்ச விஹாரி ஜய ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி கோபி ஜனவல்லப ஜய கிரி வரதாரி ஜய கிரி வரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லப ஜய கிரி வரதாரி யசோதானந்தன ஜய ப்ரஜ ஜனரஞ்சன ஜய ப்ரஜ ஜனரஞ்சன ஜய யமுனா திரவனசாரி ஜய குஞ்ச விஹாரி ஜயோ ஜ जयो यमुना तिरवन चारी जयो कुंज विहारी। दयो राधा माधव कुंज विहारी, जयो राधा माधव कुंज विहारी। जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंदस्य भक्ति वेदांत गोस्वामी ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरियस, ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड श्री गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्सेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज हम स्कंद 5 अध्याय 1 और 18 नंबर का श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। यह षट सपत्नान विजिगिष्माणो ग्रहेषु निर्विशयते तपूर्वम् अत्यन्ति दुर्गाश्रित ऊर्जतारिन् क्षीणेषु कामं विचिरे द्विपश्चित्। यः षट् सपत्नान् विजिगिष्माणो ग्रहेषु निर्विशयते तपूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जतारिन् क्षीणेषु कामं विचिरे द्विपश्चित्। यषट् सपत्नान् विजिगशीयमाणो ग्रहेषु निर्विशयते तत्पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जतारिन् क्षीणेषु कामं विचिरे द्विपश्चित्। माताजी षट सपत्नान विजगेश मानो ग्रहेश निर्विशयते तत्पूर्वम् अत्तेति दुर्गा श्रितोर्जितारे क्षीणेषु कामं विचरेत। तो शब्दार्थ इस प्रकार से है, यह जो कोई षट छह सपत्नान प्रतिपक्षी श्री श्री राधा वृंदान विहारी गौरंगा महाप्रभु की जय। विजगीश माणा जीतने की आकांक्षा रखने वाले ग्रहेशु गृहस्थ जीवन में निर्विश्य प्रवेश करके यतेत प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वम प्रथम अत्तेति जीत लेता है दुर्ग आश्रितः सुरक्षित स्थान दुर्ग में रहते हुए ऊर्जित आरिन अत्यंत प्रबल शत्रुओं को क्षीणेशु क्षीण कामम विषय वासना विचरेत विचरण कर सकता है। विपरिचित अत्यंत अनुभवी विद्वान। भाषांतर और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गृहस्थाश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है तो वह उस राजा के समान है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा कामेच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के ही कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य, चार वर्ण तथा चार आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय बनने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे परिपक्व विद्यार्थी को गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है और क्योंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी होती है इसलिए जो ही तरुणावस्था की प्रबल तरंगे समाप्त हो जाती है और वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह सन्यास ग्रहण करता है तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। इस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवावस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा सन्यास ग्रहण करने पर अत्यंत निर्भय और निशंक रहता है। ఓం అజ్ఞానతిమిరందస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపాకదామయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుర్వైష్ణవానశ్చ శ్రీరూపం సాకరజాతం సహగణ రఘునాథం నితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన సహగణలలిత శ్రీ విశాఖాన్వితానశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. ఉత్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. తో హరే కృష్ణ. తో ఉపస్థిత్ సారే బడే సీనియర్ వైష్ణవ కా మే ఆశీర్వాద్ చాతా హూ కి ఆజ్ కే ఇస్ టాపిక్ షాయద్ సే ప్రభుజీ నే చున్ కర్ దియా హై గృహస్థ ఆశ్రమ్ కే బారే మే ఔర్ సాత్ మే మేరీ కుచ్ ఐసీ పత్రతా నహీ హై జో భీ అభీ తక్ కుచ్ మేరే గృహస్థ జీవన్ మే అనుభవ్ కియా హై యా సాధు శాస్త్ర కే ద్వారా జో కుచ్ భీ సునా హై అభీ తక్ తో ఉస్కా थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूंगा. तो यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि सारे सीनियर्स है. जैसे कोई टीवी शो में एक स्टेज दिया जाता है बच्चे को और बाकी सारे जो है टीचर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे मैं हूँ सबके सामने. तो कृपा करके जो कुछ भी गलतियाँ होंगी इसमें तो बाद में मुझे बताएं आप. तो शुरुआत करने से पहले जैसे यहाँ पे श्लोक में बताया है, तथापि कीर्तिया मंग्य यथा मति यशा यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वा सत्कर्तुम गिरिम अन्य विदासतिम. जितनी मेरी मति है उतना मैं बोलने का प्रयास करूंगा. तो इस चर्चा में हो सकता है कि कोई पुरुष के बारे में कुछ बता रहा हूं तो माता जी लोग ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों के लिए है सब्जेक्ट. और जब भी स्त्रियों का विषय आता है या पुरुषों का विषय आता है तो दोनों के संबंध में ये विषय है. तो यहाँ पे जो इंद्रियों के विजय होने की बात हुई है और इस दुर्ग को पार करना है तो ये सबके लिए, सभी आश्रमों के लिए जरूरी है. ऐसे नहीं कि सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही ये जरूरी है, तो सभी आश्रमों में ये कंपलसरी है कि सबको इंद्रियों को जीतना है, सबको मन को कंट्रोल रखना है. जैसे एक डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर जो है विज्ञापन करते हैं कि जिसकी भी मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा तो उसको मैं 500 रुपये रिटर्न में दे देता हूं और जिसका भी इलाज होगा वो मुझे 20 रुपये मेरी फीस दे सकता है. तो एक व्यक्ति सोचता है कि ये डॉक्टर से मैं 500 रुपये वसूली करके रहूंगा. तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोल देता है कि डॉक्टर डॉक्टर मेरे नाक में जो है स्मेल जो है वो नहीं आ रहा है, तो कृपा करके मेरा इलाज कीजिए. तो तुरंत कंपाउंडर को बोलता है अरे 22 नंबर का वो डब्बा लाओ. तो तुरंत वो कंपाउंडर लाता है और उसके मुंह में वो 22 नंबर के डब्बे का जो भी मेडिसिन होता है उसके मुँह में डाल देता है और तुरंत वो चिल्लाता है अरे डॉक्टर ये क्या, ये तो केरोसिन है. ओ मतलब तुमको समझ में आ गया, स्मेल आ गया, मतलब तुम्हारा इलाज हो गया, तुम क्या करो 20 रुपये दे दो. तो उसको लगता है यार 20 रुपये मेरा तो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो जाता है और फिर से बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर मेरी जो स्मरण शक्ति है वो नष्ट हो गई है, तो कृपा करके मेरा इलाज कीजिए। तो फिर से डॉक्टर बोल देता है, अरे कंपाउंडर वो 22 नंबर का डब्बा ला रहे। तो तुरंत उसको शॉक लगता है, अरे 22 नंबर का डब्बा मतलब क्या, रॉकेल का डब्बा, अरे वो तो रॉकेल का डब्बा है, नहीं चाहिए। हाँ मतलब तुम्हारा क्या हो गया, स्मरण आ गया, चलो 20 रुपये निकाल। उसको परेशान हो जाता है, अरे अभी मेरा 40 रुपये गए, अब 5 रुपये निकालना। तो फिर से वो अगले समय में जाता है, अभी बहाना बनाता है वो, डॉक्टर मेरे आंखों को नहीं दिख रहा है। तो डॉक्टर अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी वो बोलता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर बोले ठीक है मैं हार गया, और ये लो पैसा। जैसे ही पैसा देता है वो तुरंत बोलता है, अरे ये तो 20 ही रुपये है, अरे मतलब तुम देख सकते हो, चलो मेरे 20 रुपये लाओ। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो तो माया देवी या महामाया को जो है वो जीत नहीं पाएगा किसी प्रकार के चीटिंग करने से। तो हम देखते हैं कई बार कि कई प्रकार के जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए लोग हैं वो फंस जाते हैं किसी ना किसी कारण से, चाहे वो ज्ञानी हो, भक्त हो, यहाँ तक कि एकदंडी, त्रिदंडी, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि माया के चंगुल में आ जाते हैं। तो इसलिए हम समझे कि सत्व गुण में भी हम रह रहे हैं तो माया का प्रभाव नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। तो किसी भी गुण में हम प्रवेश करें या रहे तो उस गुण में भी जो है माया का प्रवेश होता है। जैसे हम भरत महाराज की स्टोरी देखते हैं, उसमें जो उनका परिवेश था वो सारा जो जंगल है सत्वगुणी था, हिरण भी सत्वगुणी था, जो भक्तिमय कार्य कर रहे थे वो भी सत्वगुण थे, फिर भी जड़ भरत महाराज को क्या है, माया ने किसी प्रकार से उनको चीट करके उनकी जो लक्ष्य था उसको उन्होंने भुला दिया था। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि हम हमेशा सतर्क रहना है कि किसी के चंगुल में, माया के चंगुल में बचे रहे। तो जैसे एक शिष्य जो है गुरु के पास में जाते हैं और बताते हैं इस प्रकार से कि कुछ तो मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिसके कारण मैं हमेशा माया से बच जाऊं। तो गुरु मंत्र देते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे पंछी का उदाहरण बताते हैं। तो उस पंछी के उदाहरण में बताते हैं ऐसे, जब शिकारी आ जाएगा क्या करेगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूलकर भी इसमें फंसना मत। तो ये मंत्र देते हैं। तो पंछी जो है पेड़ पे बैठा हुआ रहता है, शिकारी आ जाता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, पंछी वो मंत्र बोलता है, लेकिन वो कार्य जो है ना उसको जो करना है वो ही करता है। वो आकृष्ट हो जाता है उस दाने के खाने में और उसको शिकारी जो है पकड़ लेता है। तो इससे हम क्या जानते हैं, सिर्फ हमको जो भी नॉलेज मिला है उसको सिर्फ रटना नहीं है, उसके साथ साथ में हमको उस प्रकार से कार्य करना भी जरूरी है। शास्त्रों में बहुत सारे ज्ञान दिया है, गुरु लोग, साधु लोग बहुत सारे हमें बताते हैं किस प्रकार से हमें रहना है। तो इस प्रकार से हमें इस जगत में फंसना नहीं है। जैसे कि एक ट्रेन होता है, और ट्रेन में जो है हमारे पास में 3 लाख या 5 लाख रुपए है, तो हम क्या करते हैं, उस 3 लाख रुपए के बैग को हम ऊपर में रख देते हैं, और अगल बगल में जितने सारे भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, प्रेम से आदान प्रदान भी करते हैं, कुछ अगर हम उनको खाने के लिए देते हैं वो हमको कुछ देते हैं तो हम शेयर करते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे रहता है, वो 3 लाख रुपए के पास में रहता है। वो इधर सब कुछ कर रहा है लेकिन उसका मन कहाँ पे है, चेतना कहाँ पे है उसका, वो 3 लाख रुपए के पास में। तो तो इस प्रकार से इस संसार में भी हमें क्या करना है, सबके साथ में आदान प्रदान करना है, सबसे प्रेम पूर्वक रहना है, मिलजुल के शेयर करना है, लेकिन ध्येय कहाँ पे होना चाहिए, भगवान की ओर हमें। तो ये आसक्ति और प्रेम ये दोनों कुछ अलग अलग चीज है। जैसे प्रेम में जो होता है व्यक्ति ठीक से दूसरे व्यक्ति का ध्यान रख पाता है, लेकिन आसक्ति के कारण अगर व्यक्ति पड़ जाए तो वो गलत भी अगर किया उसके संबंधी लोग, फिर भी वो क्या करता है, आसक्ति के कारण गलत दिशा में जब व्यक्ति जा रहा होता है तो उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो उसके साथ में अटैच है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी, स्पेशली गृहस्थ जीवन में भी जो है, हमें ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ताकि जो वास्तविक प्रेम है हम उनको दे पाए। और अंत में जो वर्णाश्रम धर्म बताए हैं उसकी जो वास्तविक ध्येय है भागवतम में इस प्रकार से बताए हैं, अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। तो आखिर सारे वर्णों और आश्रम का जो है वास्तविक ध्येय क्या है, संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि ही सारे आश्रमों का ध्येय है। तो इसके अंतर्गत प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं ऐसे कि इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्य भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि अभी अगर हम ब्राह्मण हैं तो दूसरे आश्रमों के ऊपर में आधिपत्य जताने के लिए नहीं है, उसको समझाने के लिए कि बाबा आपको किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पे ऐसे क्लियर किया गया है, जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। क्योंकि बाकी आश्रमों का अगर गोल चूक गया तो दूसरे आश्रम के जो लोग हैं दूसरे आधिपत्य जताना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पे आते हैं, वृषभ देव के रूप में भी भगवान आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने भी ये सारा जो आध्यात्मिक मार्ग है उसको सिखाया था। आपणी आचार्य प्रभु शिकायु सभारे, गुरुओं के निर्देशन में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्य की शिक्षा दी। तो जब ऋषभदेव भी आए थे उन्होंने भी सारे अपने प्रजाओं को ये चारों आश्रमों की शिक्षा दी। और पहले के जीवन में कैसे व्यक्ति जो है ना आश्रम ज्वाइन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इंद्रियों को और मन को संयम करते थे, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। लेकिन आज के युग में अभी की जो चल रहा है तो इस प्रकार से नहीं है। तो जो भी समाज में चल रहा है उसके अनुसार सब लोग जैसे ही उम्र हो गया तो उस व्यक्ति की शादी कर देते, क्योंकि उसका प्रशिक्षण कुछ भी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है इंद्रियों को, क्योंकि हमारा भी इसी प्रकार से हुआ था। तो आज के जो चल रहा है जनरेशन सब ऐसे ही है, बिना ट्रेनिंग के हम क्या कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है गृहस्थ आश्रम में। तो सभी आश्रमों का उद्देश्य है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मानव समाज का ये उद्देश्य है। अगर अभी उसको ट्रेनिंग मिला है तो ठीक रहेगा। अगर ट्रेनिंग नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो वो अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर पा रहे, उसमें जैसे कि यहाँ बताया है 6 इंद्रिय फिर से ऐड हो जाएंगे, तो पहले उसके 6 इंद्रिय जो है उससे वो परेशान है, फिर से जब शादी हो जाएगा फिर से 1-6 ऐड हो जाएंगे, अगर और कुछ बरस बीत गए तो और 1-6 बच्चे के रूप में ऐड हो जाएंगे, और कुछ देर हो गया तो और कुछ बरस गया तो और 1-6 फिर से ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल 6-6-6-6-24 हो गया। अभी 6 को ही संभालना मुश्किल था, अभी 24 हो गया तो उसका हालत क्या हो जाता है। तो ये परिस्थिति गृहस्थ आश्रम में होती है, तो पत्नी को भी संभालो, बच्चे को भी, उसकी इच्छाएं अलग होती है, पत्नी की इच्छाएं अलग होती है, और इस सारे कार्यों में व्यक्ति जो है वास्तविक जो लक्ष्य है वो भूल जाता है। पिछले कई श्लोकों में बार बार ये कहा गया था, ए भाई ये जो भी गृहस्थ में जाता है वो फिर से आध्यात्मिक जो मार्ग है उसको अपनाने के लिए बहुत कठिन होता है उसको, क्योंकि इतने सारे झमेले में वो जल्दी निकल नहीं पाता वहाँ पे, और उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं, और इससे पहले उसका ट्रेनिंग भी हुआ नहीं है, तो उसकी हालत किस प्रकार से होती है एक सामान्य व्यक्ति की। तो इसलिए जब भी वो मतलब गृहस्थ आश्रम में इतना वो अटैचमेंट हो जाता है कि वो रह नहीं पाता है परिवार बच्चों के सिवा, या उसमें एक आकर्षण ऐसा उत्पन्न हो जाता है जैसे ही अगर लड़की या लड़का कुछ बाहर में पढ़ाई के लिए गया है तो तुरंत जब उसका फोन आ जाता है तो तुरंत वो जो पिताजी है उसके या माताजी है उसकी भावना इतनी उमड़ जाती है, वो पहले इतना ही पूछेंगे कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, तो इतना वो मतलब व्याकुल होता है उसकी सिर्फ आवाज सुनकर ही। जैसे चुंबक होता है, चुंबक का जो आकर्षण होता है वो नहीं दिखता है, चुंबक दिखता है, ऐसे ही सेटल रूप में हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं होती है, वो भावनाएं जब व्यक्ति का कुछ आवाज सुनते हैं या कुछ उसका ध्यान आ जाता है तो तुरंत वो सारी भावनाएं जो है उमड़ पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुत आसक्ति वो संसार या अपने पत्नी बच्चों के इसमें आसक्त हो जाते हैं, वो सामान्य होता है, क्योंकि जनरली गृहस्थ आश्रम में जो भी है तो उनको वास्तविक में वो अनुभव होता है, और साथ साथ में रिश्तेदार इसके कई सारे संबंधी लोग होते हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है, उसका व्यापार होता है, नौकरी होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा होता है, उसको सब बैलेंस करना पड़ता है इस प्रकार से उसको। तो इस ऐसे परिवेश में रहकर वो मिथ्या अहंकार वश कुछ अलग अलग उसका हेतु होता है, उद्देश्य उसका अलग जो कि आध्यात्मिक से कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं ना, स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तुम्हारे हरी। तो स्वजन के पालन में इतना वो गिर जाता है कि भगवान को ही वो भूल जाता है। तो कुछ घटनाएं हुई थी ऐसे जितना मैंने देखा है, तो उसके विषय में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे एक पति पत्नी थी, टेलरिंग का काम कर रहे थे, तो ऐसी घटना हो गई कि उनको एक कलर टेलीविजन चाहिए था घर में, तो दोनों ही उसके प्रति टेलीविजन के प्रति आकृष्ट थे, हालांकि उनके घर में जो है लक्ष्मी की कमी थी, फिर भी वो किसी प्रकार से कर्जा करके वो टेलीविजन उन्होंने प्राप्त किया और अपने घर में लाया, और कुछ ही दिनों के बाद में तो जो भी उनका वर्क था उससे वो आमदनी नहीं कमा रहे थे, तो उसके कारण जो परिस्थिति थी पहले अच्छी खासी तो वो भी उनका बिगड़ गया, और दोनों पति पत्नी के बीच में कलह होने लगा, जो लाए थे टीवी वो भी उनको निकालना पड़ा, ऐसा सिचुएशन आ गया कि तो जो भी हम निर्णय लेते हैं गृहस्थ जीवन में, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे कि हमारी बस की बात है, हम कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको त्यागना जरूरी है। तो इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो है, एक किराना शॉप था और एक दूध का शॉप था, तो दोनों में कंपटीशन चलता था। अभी किराना दुकान वाला जो है 10% उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम निकलता है, लेकिन जो दूध वाला था वो बाहर में दूध बेचकर भी आता था और उसके पैसे से वो दूसरों को ब्याज के लिए भी दे देते थे। तो उसके पास में पैसे आ रहे थे और कमा रहा था, गाड़ी भी लिया, कुछ जगह भी लिया। अभी इसको ये शॉप वाले को लग रहा है, यार ये मेरा व्यक्ति इतना कमा रहा है, क्यों ना मैं भी कुछ ले लूं। तो उसको आजू बाजू समाज के लोग बोलते थे, अरे तुम क्या कमा रहे, तुम ये देखो सामने वाला कितना लिया, देखो गाड़ी लिया अभी वो, हाँ उसके बाद में जमीन भी लिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उसको भी कुछ अलग लगा, उसकी पत्नी को भी, समाज के वही के लोग जो है उसको ताने मारते थे। उसने भी सोचा कुछ ना करके मैं कुछ खरीद लूँ, तो उसने भी एक गाड़ी खरीदा। हालांकि उसकी आमदनी उतनी नहीं थी, तो ब्याज के ऊपर में उसने पैसा ले लिया और गाड़ी खरीदा, थोड़ा सा जमीन खरीदा। बाद में उसके पास में पैसे नहीं निकल रहे और जो भी इनकम होता था तो फिर से वो आमदनी लेकर वो फिर से सामान लेकर जो किराना जो भी सामान होता है वो भर देता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है पूरा जो भी कर्जा किया था उसके वही पे जा रहा है। तो जो भी माल भरना है वो नहीं भर पा रहा था। तो ऐसे करते करते हुए कई सारे झगड़े हो गए, प्रॉब्लम्स आ गए। जो भी ठीक से चल रहा था उसका पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, वो भी ठप हो गया और लोग अलग अलग प्रकार से गाली गलौज करते हुए उसका पूरा फैमिली जो है प्रॉब्लम में आके जो निवास स्थान था उसको भी छोड़कर वो फिर से दूसरी जगह पे जाना पड़ा उसको। तो ऐसे गरीबी की हालत में उसको फिर से जीना पड़ा। तो गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होती है सभी विषय में। तो इसको ऐसे एक उदाहरण होता है ना, जो बच्चे जो है लींबू चमचा, पता है ना, चमचा रखते और लींबू रखते हैं, तो कौन जीत पाता है लींबू चमचा में? जो बैलेंस करके पूरा वो जहाँ तक उसका जो गम्य स्थान है वहाँ पे अगर जब पहुँचता है व्यक्ति तो वो जीत जाता है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मी के विषय में कहिए या अलग अलग जो भी इच्छाएं हैं, पारिवारिक इच्छाएं, उनको भी बैलेंस करना होता है, समझाना होता है हर बार, जिसके कारण जो है परिवार में जो है एक ठीक से विचार भी रहे पारिवारिक विचारों के पास। तो भक्ति में जब एंट्री मारते हैं जो भी व्यक्ति, तो तुरंत उसको नियम वगैरह जो है शुरुआत नहीं करना चाहिए घर में। जैसे ही वो भक्ति में आ जाता है तो साधना कम करता है, नियम ज़्यादा लगाता है। तो इसके कारण जो होता है पति जो पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। क्यों? ये नियम इतने बताता है जो कि पहले उन्होंने कभी पालन नहीं किए हैं और उनका भी सेवा होती है अलग अलग प्रकार की, तो नियम इतने सारे वो जोड़ देता है। और साधना कितना करता है, एक माला दो माला, या सुबह में उठेंगे नहीं करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से अगर हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उनका परिवार भी जो है चिढ़ जाता है भक्ति से, भक्ति वो भी उतने फेवरेबल नहीं बन जाएंगे वो। तो इसलिए हमको ध्यान देना है, साधना अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद में धीरे 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 जो है गृहस्थ जीवन में फेवरेबल बनाना है अपने जो पत्नी है, बच्चे हैं। तो घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है धीरे धीरे से, पहले साधना मेन, उसके बाद में फिर एक घर में इन्वायरमेंट फील करे, जैसे भगवान के कुछ छाया चित्र लगाए, धीरे धीरे से कुछ भोग की प्रक्रिया को बदले, उनको फेवरेबल बनाने के लिए ऐसे मंदिर में लाना जरूरी है। कम से कम एक बरस में जो है एक यात्रा के लिए तो कम से कम उनको बाहर लेके जाना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर उनके थोड़ा माहौल क्रिएट किया तो वो धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू करेंगे। और हमें पुरुषों के लिए क्या है, थोड़ा स्वतंत्रता होती है, हम जाकर कहीं पे भी क्लास वगैरह सुनते हैं, लेकिन माताजियों का जो है सेवा घर में ज़्यादा होने के कारण वो सुन नहीं पाते हैं और विषयों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनको इस प्रकार से कुछ सुविधा देना चाहिए घर में ही, ताकि वो कुछ MP3 प्लेयर वगैरह ऐसा, मोबाइल बिल्कुल सॉरी क्षमा कीजिए लेकिन नहीं दिया तो बहुत अच्छा है, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल, बटन वाला दे सकते हैं हेलो बात करने के लिए लेकिन मोबाइल नहीं। तो इस प्रकार से अगर उनको श्रवण की एक सुविधा अगर हम दे दे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे वो उसमें रम जाते हैं, समझ जाते हैं विषयों को। तो उसके बाद में हमें भी क्या करते हैं, वो संयोग देना प्रारंभ करते हैं भक्ति के उन कार्यों में। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक डिवोटी थे जिन्होंने जो है ऐसे ही घर में नियम 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 बनाकर, तो ऐसा उसका लाइफ हो गया, तो खुद भी भक्ति नहीं किया, घर वालों को भी भक्ति नहीं दे पाया, और खुद जो है जो हमने कहा था उस उनको कि भाई इस लाइन में मत जाओ, क्योंकि वो उसके पास जो पैसा है वो कर्जा दूसरों को देना चाहता था इंटरेस्ट के ऊपर में, कुछ BC जैसा कुछ होता है ना, तो ऐसा वो BC चलाता था। तो वो इसमें इतना फंस गया, वो लोग उसको पैसे नहीं दे रहे थे। हम बारंबार शुरुआत से ही हम बता रहे थे बाबा ये इसमें बिल्कुल ही मत पढ़ो, क्योंकि तुम अभी भक्ति कर रहे हो, अच्छे खासा तुमको कमाई हो रहा है। देखो लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये लोग है वो लोग है उनसे पूछो, तो किसी की बात नहीं सुना वो। फिर वो किया अपना जो मन का करना है, यहाँ तक स्थिति आ गई थी उसकी, तो खुद वो नींद की गोली खाकर आत्महत्या करना चाहा। तो इस प्रकार से जो सिचुएशन होता है उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और साधु शास्त्रों का ज्ञान भी लेना ज़रूरी है। और गृहस्थ जीवन में शुरुआत के दौरान तो कोमल श्रद्धा होती है, वो कोमल श्रद्धा के साथ गृहस्थ जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, जिसको फेस करते हुए उसको लगता है कि श्रद्धा मतलब उतना विकसित ना होने के कारण कुछ भी समस्या वगैरह आ गया ना, तो दूसरे दूसरे जगह पे वो शरण लेता है। जैसे अभी कुछ लोग जो है गृहस्थ जीवन में ज़्यादातर जो है पैसों का प्रॉब्लम होता है, व्यापार अगर नहीं चल रहा है तो उसका प्रॉब्लम होता है, और साथ साथ में जो किसी को संतान नहीं हुआ गृहस्थ जीवन में वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो समाज वगैरह जो है ना वो हर बार उसको टोकता रहता है, तो अगर वो दृढ़ नहीं है या श्रद्धा उसका विकसित नहीं हुआ तो समाज की ये सारी बातें वो सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है वो। तो इसलिए वो अलग अलग मार्ग भी चूज करने की संभावना होती है भक्ति में आने के बाद में भी। कैसे, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं किसी ज्योतिषी के पास में जाएंगे, तो वो ज्योतिषी जो भी बताएगा उसके अनुसार वो करना प्रारंभ कर देगा, कुछ अंगूठी का उपयोग करेंगे, कुछ मंत्रों का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये भगवान के ऊपर उतनी फेथ श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। कोई देवी देवताओं के शरण में जाते हैं जहां पर किसी जीव को बलि भी देना पड़ता है, तो इतना घृणित कार्य में भी वो सम्मिलित होते हैं, एक की जान देने के बाद एक उसको मिलेगा, इतना खतरनाक वो पाप कार्य में भी सम्मिलित होने की संभावना होती है। और कुछ लोग तो हैं कुछ अलग ही बाबा जी के पास में जाते हैं, जो कि मुस्लिम कैटेगरी के होते हैं, जो बाबा जी बनते हैं, तो उनके पास में भी जाके उनकी इच्छा पूर्ति करने का वो प्रयास करते हैं। अलग अलग मंत्र तंत्र यंत्र क्या क्या लगाते हैं, क्या भक्ति में आने के बाद में। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भगवान के ऊपर की श्रद्धा है, गुरु के ऊपर की श्रद्धा है, शास्त्रों के ऊपर की, जो भागवत धर्म की जो श्रद्धा स्थान है, वो उससे वो निकल जाता है व्यक्ति धीरे 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 करते हुए। तो इससे क्या हो जाता है, भक्ति वो ठीक से नहीं कर पाता है वो, तो हरि नाम में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, भागवतम के श्रवण में उतना उसको उत्साह नहीं आएगा सुनने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है व्यक्ति को फिर से उसका भक्ति का जो मार्ग है उसको वो छुड़ा देता है। तो इसके लिए गृहस्थों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें चाहिए हैं तो भी हम देख सकते हैं भक्ति के मार्ग में भी ये सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, हाँ, और साथ साथ में श्रद्धा का होना भी जरूरी है। जैसे किसी को गृहस्थ को संतान की अपेक्षा है, तो कई सारी विधि बताई है भक्ति मार्ग में, हाँ, तो उसको अपनाना चाहिए। जैसे गोपाल मंत्र होता है नहीं, भगवान से कनेक्टेड है वो, तो उसको करना चाहिए। कुछ ऐसा व्रत होता है जो भगवान से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें अगर हम भक्ति के अनुकूल ऐसे अगर प्रोसेस करेंगे तो हमारा भक्ति मार्ग और फैमिली लाइफ भी जो है वो ठीक से रह सकता है। और जब हम भक्ति के जीवन में आ जाते हैं, सॉरी, जब हम भक्ति के जीवन में आ जाते हैं तो हमको समझना चाहिए कि परिवार वगैरह किस प्रकार से है और कैसे हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हैं, उसके बाद में हमको सारी आसक्ति जो है दूर करना बहुत जरूरी है। तो जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है ना, नैकत्र प्रिय संवासम सूरुदा चित्र कर्मणा ओघेन व्यूहमानाना प्लवानाम श्रोत्र तयोरत। तो जैसे नदी में जो है दो लकड़ियाँ गिरी जाती हैं तो बहते बहते हुए ये एक साथ निकल जाती हैं, लेकिन कुछ अंतराल के बाद में कुछ जो पत्थर वगैरह है कुछ उसके सामने आ जाता है, तो दो जो लकड़ियां हैं अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो इसी प्रकार से हम फैमिली जो है इकट्ठा आ गए हैं गृहस्थ जीवन में, अगर हम ये बात को समझे तो हम एक दूसरे की हेल्प ठीक से कर पाएंगे, और इसके जो ये दुर्ग कहाँ गया है, इस दुर्ग से हम निकल सकते हैं, खुद भी निकल सकते हैं और अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है गृहस्थ में पति का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि वो सही सही से निर्णय लेना जरूरी है। जैसे कहा गया है ना, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः, मनः परतस्तु बुद्धि सह बुद्धि सह। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ना, इंद्रिय अगर इंद्रियों के से भी जो श्रेष्ठ है, हाँ, मतलब जो पदार्थ होते हैं पदार्थ से भी श्रेष्ठ इंद्रिय है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। तो अगर शास्त्र का अध्ययन किया, कुछ हमने सुना है साधु गुरुओं से, तो उसके अनुसार हमें अपना भक्तिमय जीवन में जो है गृहस्थ जीवन हमारा चलना चाहिए। जैसे बुद्धि में अगर विवेक नहीं है तो क्या होगा, जैसे एक बच्चा है, बच्चा अगर चॉकलेट मांग रहा है, बच्चा समझ लिए इंद्रिय है और वो क्या कर रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, और वो बात कहाँ गई, मन के पास। मन क्या है, पत्नी के रूप में हम स्वीकार करेंगे उसको, ठीक है, मन पत्नी है और बुद्धि कौन है, पिताजी है, ठीक है। तो अभी बच्चा बोल रहा है मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, अभी माँ क्या बोल रही है, यस चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, हाँ बच्चे को दे दो चॉकलेट चॉकलेट दो चॉकलेट दो। लेकिन पिताजी अगर सही बुद्धि है उसको वो क्या करेगा, ना चुप बैठो चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारी सेहत दांत वगैरह खराब होगा। वो मैसेज किसको फॉरवर्ड करता है? पत्नी, मतलब पत्नी कौन है? मन है। और मन एक बार निर्णय लिया तो इंद्रिय क्या हो जाएंगे? शीतल पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बुद्धि का जो है हम उपयोग करेंगे ठीक से, तो हमारा जीवन जो है, जो वास्तविक हमको जो आनंद चाहिए गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, वो आनंद हमें प्राप्त होगा। सॉरी प्रति, तो अनुभवी भक्तों की बातें मानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे काउंसलर्स हैं, कई ब्रह्मचारी लोग हैं, तो इनकी हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए। जैसे रूप रघुनाथ प्रभु है, आदिकेश्वर प्रभु है, बालाजी गोविंद प्रभु है, श्री गौरचरण प्रभु, प्रेम प्रभु, ऐसे कई सारे ब्रह्मचारी भी हैं जो हमेशा हमको कुछ सिखाते हैं भक्ति के बारे में। तो उनको अपने ने कहा हम प्रयास करें, शेड्यूल बनाए हमारा, कुछ भक्ति के उन कार्यों में भी संलग्न होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम शास्त्रों में भी कई उदाहरण देखते हैं, जब भी कुछ इच्छाएं हो गई गृहस्थ आश्रम में, अगर पति हो तो पत्नी को जो है सही वस्तु प्रदान करने के लिए, जैसे कर्दम मुनि थे और देवती माता का जो लाइफ है उसको हम देख सकते हैं, साथ न साथ में कश्यप मुनि और दिति, जब दिति को भी एक संतान चाहिए होता है जो इंद्र को मार सके, तो उसकी गलत इच्छा को भी जो कश्यप मुनि है परिवर्तन करके दिया था, जिसके कारण वो भी भक्ति में आ गई और उसको संतान भी प्राप्त हो गया। एक संतान नहीं, मरुदगण कितने थे? 49 संतान प्राप्त हो गए उनको। तो इसी प्रकार से जो गलत इच्छाओं को परिवर्तन कर सकते हैं अगर भक्ति में ठीक से पति लगा है, उसी प्रकार से पत्नी भी जो है भगवान से प्रार्थना कर सकती है, अरे इस थोड़ा मेरे पतिदेव को थोड़ा बुद्धि दे दे भक्ति में लगे। तो इसलिए हम नागपत्नियों का उदाहरण देखते हैं, तो नागपत्नी जो है भगवान से प्रार्थना करती है, इतने सारे कालिया के ऊपर में प्रहार हो चुका था, उसका विष निकल गया था, तो नागपत्नियों भी प्रार्थना किया था। इसलिए इस कारण हमें हर बार पति पत्नियों में भी ऐसी भावना होनी चाहिए जिसके कारण एक दूसरे को हम संयोग करते हुए भगवान के उस दिशा में प्रवृत्त हो, जिसके कारण हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस हम उसको पूरा कर पाए। तो सॉरी, थोड़ा सा समय लेंगे हम, 10 मिनट। तो अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो उसके ऊपर में थोड़ा सा एक भगवान की लीला, ये सब थोड़ा सा मतलब तत्व ज्ञान जैसा कुछ लगा, अभी थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा पास टाइम कुछ। तो जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो है, एक भक्त होता है जो पूरी जा रहा होता है, तो अपना अपना भजन में लगा हुआ था और जाते जाते हुए वो मायापुर नवदीप धाम पहुंच गए। तो आप अपने भजन में वो हमेशा रत रहते थे और भजन गाते हुए जाते थे, जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। तो अपने इसमें भजन में रमते हुए जा रहे थे, तो उस दिन वो वहाँ पे नवदीप में विश्राम करना चाहते थे। तो उस समय में ये साधुओं को जो है अपने जो निमाई जी के पिताजी थे जगन्नाथ जी मिश्रा, तो उनके वो देखते हैं, अरे ये तो भजनानंदी साधु दिख रहा है और इसके पास में तो सुंदर गोपाल जी का विग्रह भी है जिनकी वो पूजा अर्चना करते थे हर रोज। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, वो चाहते थे कि ये साधुओं को जो है मेरे घर में मैं बुलाऊं, और वो बड़े ही प्रेम से उस साधु को बुलाते हैं, याचना करते हैं, लेकिन साधु बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे कहीं पे जाना नहीं, नहीं 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 आप आए हैं हमारे नगर में आए हैं, कृपा करके हमारे घर चलिए, कुछ आप प्रसाद लीजिए। तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं मैं प्रसाद वगैरह किसी के घर में नहीं लेता हूँ। तो हर बार विनती करके जगन्नाथ मिश्रा जी बोलते हैं कि आपको जो है ना एक अलग सा कमरा देंगे, तो आप खुद से आप भोजन पकाइए और खुद से आप आपके गोपाल जी को भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करें। तो बड़े ही कहने कहने पर वो जो साधु हैं आ जाते हैं घर में, तो उनको अलग सा कमरा देते हैं, सब जो भी चाहिए व्यंजन बनाने के लिए सारे पदार्थ तो उपलब्ध करके देते हैं, और अपना चूल्हा चक्की उनका चल जाता है, सब कुछ भोग विशेष व्यंजन बन जाते हैं। और जैसे ही भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च नमो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो, तो तुरंत जो जैसे भोग की थाली के पास में निमाय आ जाते हैं और तुरंत वो सारे भोग में से पदार्थ लेकर वो खाने लगते हैं। तो इसको देखकर फिर वो चिल्लाने लगता है, नहीं तो महाराज का वर्ड है हाय करके, हाय 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 हाय, तो ऐसे चिल्लाते रहते। तो ये हिंदी है इसलिए नहीं करके बोला, तो नहीं करके चिल्लाते। अरे सब लोग फिर भाग के आते, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो देखते ये देखो ये बालक ने मेरे सारे भोग को जो है दूषित किया है। वो तुरंत जगन्नाथ मिश्रा जी देखते, अरे निमाई क्या किया तुमने। तो उसके पास में दौड़ के जाते तो निमाई जो है तुरंत बाहर भाग के जाता है। तो वो फिर से जगन्नाथ मिश्रा जी बोलते, नहीं 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 कृपा करके आप ये फिर से बनाइए, फिर से आपके गोपाल जी को भोग लगाइए। वो बोलते हैं, नहीं 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 ये शायद से ये मेरी गोपाल की ही इच्छा है कि आज मैं भूखा ही रहूं। नहीं नहीं जगन्नाथ मिश्रा जी बोलते हैं, आप मेरे अतिथि हैं, ऐसे भूखे रहेंगे तो कैसे। तो फिर से वो प्रार्थना करते हैं, तो फिर भी नहीं मानते हैं, तो उनका जो लड़का है विश्वरूप वो आ जाते हैं। फिर वो आकर और मधुर वाणी से मधुर वचनों से उस ब्राह्मण को बता देते हैं कि कृपा करके आप क्या कीजिए, फिर से भोग बनाइए। जब विश्वरूप बोलने लगते हैं तो उनका जो भक्ति की भावना है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि विश्वरूप भी जो है भगवान के ही अंश होते हैं, वो भी अवतार होते हैं। तो इसलिए उनकी इतनी सुंदर वाणी सुनकर फिर से वो भोग बनाते हैं, सारा क्लीनिंग करके फिर से भोग बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही सब कुछ भोग लग गया, फिर से घंटी बजाते हुए नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च नमो जिगाताय कृष्णाय गोविंद, मतलब फिर से निमाय आ जाता है। फिर से जैसे ही उसने आके खोला, फिर से वो चिल्लाता है, नहीं ये क्या किया, ये बालक कहाँ से आ जाता है, जब भी मैं पुकारता हूं तो ये बालक फिर से आ जाता है, ये भोग मेरा अशुद्ध कर देता है। तो तुरंत फिर से आवाज सुनकर फिर से सारे लोग दौड़ के आते हैं, अरे क्या होगा, अरे निमाई अभी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जगन्नाथ मिश्रा, फिर से उसके पीछे भागने लगते। तो सारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो बोलते हैं, नहीं 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 आप इसको कुछ, वे बालक है छोटा है इसको कुछ मत बोलिए, इसको अभी जो है ना हम हमारे पास में कमरे में बंद कर रखेंगे, अभी ये बाहर नहीं निकलेगा। तो सारे योजना हो जाती है, फिर से विनती करते हैं साधु को, तो फिर से वो साधु बोलता है, नहीं 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 ये आज मेरे गोपाल की इच्छा नहीं है कि मुझे भोजन प्राप्त हो, नहीं करूँगा। तो किसी अलग अलग प्रकार से उनको मनाते हैं सब लोग, फिर से वो प्रारंभ करता है भोग लगाने का। तो भोग लगाते हैं फिर से, तो आप देखिए वो सुबह से दोपहर से या शाम से स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने सारा भोजन की विधि बनाने का। तो अभी रात हो गई थी और रात के तकरीबन 12 बज गए थे, तो फिर से सारे व्यंजनों को फिर से भोग लगाने लगा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च नमो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो तुरंत फिर से वो निमाई वहां पे आ जाता है, फिर से चिल्लाने लगता है, नहीं ये बालक कहाँ से आता है, फिर से ये मेरा भोजन अशुद्ध किया है, मेरा भोग अशुद्ध किया करके वो फिर से चिल्लाते हैं। लेकिन इस बार जो है कोई आते नहीं है वहाँ पे निमाई को मतलब निकालने के लिए, क्योंकि सारे जो है ना भगवान की योग माया शक्ति से सब लोग सोए हुए रहते हैं। और फिर से वो निमाई खुद से बोल देते हैं, अरे क्या है आप हर बार मुझे बुलाते हो, आओ भोग लगाया खाओ, और जब मैं आता हूँ तो तुम चिल्लाते हो, ये क्या है तुम्हारा बर्ताव। तो तुम वो ब्राह्मण बोलता है, अरे मैं तुमको कहाँ से बुलाता हूँ, मैं तो मेरे गोपाल को भोग लगा रहा था और तुम बीच में आके ये सारा भोग अशुद्ध करते। तो अरे मैं तो हूं तुम्हारा गोपाल, देखो करके फिर भगवान जो है अपना सुंदर जो बाल रूप है वो दिखाते हैं, और तुरंत जो भक्ति के सारे भाव उनके शरीर में अवतरित होते हैं और वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, भगवान की स्तुति गाने लगते हैं। वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अलग अलग प्रकार की स्तुति वगैरह करते हैं, वो समझ जाते हैं कि यही जो निमाय है वही कौन है, मेरे गोपाल जी है। तो इस प्रकार से भगवान उनको दर्शन देते हैं और बताते हैं कि ये बात किसी को भी बताना नहीं। तो इस प्रकार से वो वचन देते हैं और चले जाते हैं भगवान फिर से। तो उसके बाद में जितना सारा भी भोग लगाया हुआ था पहले भी और अभी भी, वो सारे भोग को वो ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। अभी वो इतना सारा भोग तो नहीं खा सकता है ना, तो क्या करता है, जो कुछ भी बचा है दाल सब्जी राइस पूरा अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है, कुछ यहाँ पे पोत लेता है, यहाँ पे पोच लेता है पूरा शरीर में, और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। वो सब कुछ देख के फिर शायद से बाबा जी का कुछ हालत खराब हो गया, ऐसे बाकी के लोग सोचने लगते हैं। और हर दिन नवदीप में वो बाबा जी वहीं पे रहते थे और हर रोज वहाँ पे आते, अभी जगन्नाथपुरी जाना था उनका, लेकिन उनका नवदीप जो है वही उनका क्षेत्र बन गया, वहीं पे रहते थे और हर रोज निमाई के दर्शन के लिए आते थे। और किसी को कुछ नहीं बताते कि निमाई जो है वो कृष्ण है करके। तो इस तरीके से उनका जीवन जो है यापन होता है और वो कृष्ण का कृपा प्राप्त कर लेते। शायद से वो पिछले जन्म में कुछ थे, मुझे पता नहीं, मथुरा में भी वृंदावन के लीला में कुछ थे शायद से, तो वही कृपा उनको यहाँ पे फिर से प्राप्त हुई थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सॉरी क्षमा करे, 10 मिनट लेट हो गया।